श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम ईश्वर्यवाणी की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मीसम और जहरा जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज भी हम पवित्र कुरान के सूरह अर-रहमान के एक अन्य भाग से परिचित होंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि ये पवित्र कुरान का 55वां सूरह है और मदीने में उतरा है। इस सूरह की 14वीं और 15वीं आयतों में महान ईश्वर मनुष्य और जिन्नात को पैदा करने में अपनी शक्ति को बयान करता है और कहता है, उसी ने मनुष्य को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है और उसी ने जिन्नात को आग की ज्वाला से पैदा किया है।
पवित्र कुरान में इंसान को पैदा करने के बारे में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि इंसान आरंभ में मिट्टी था। उसके बाद मिट्टी में पानी मिलाया गया, फिर वो कीचड़ में परिवर्तित हो गया और उसके बाद उसमें लस और चिपक पैदा हो गई और उसके पश्चात वो सूखी मिट्टी बन गया।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये विशेषताएं इस बात की सूचक हैं कि मनुष्य का आरंभ और उसके अस्तित्व में आने का मूल स्रोत मूल्यहीन चीज़ मिट्टी थी, परंतु महान ईश्वर ने उस मूल्यहीन वस्तु से ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी की रचना की। साथ ही वो इस बात की भी सूचक है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसी आत्मा के कारण है जिसे महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने उसके शरीर में डाल दिया है।
15वीं आयत में महान ईश्वर जिन्नात के पैदा करने के बारे में फरमाता है, उसी ने जिन्नात को आग की ज्वाला व लपटों से पैदा किया है। महान ईश्वर ने इंसान को मिट्टी और पानी से पैदा किया है, जबकि जिन्नात को हवा और आग से पैदा किया है। दोनों की रचना की जो अलग अलग चीज़ें हैं, वे इंसान और जिन्नात के अंदर बहुत से अंतरों का स्रोत हैं। सूरह रहमान की 17वीं आयत में सूर्योदय और सूर्यास्त की ओर संकेत किया गया है। महान ईश्वर इस आयत में कहता है, वही जाड़े गर्मी के दोनों पूरबों और दोनों पश्चिमों का मालिक है।
सही यह है कि वर्ष के हर दिन सूरज के निकलने का एक स्थान होता है और उसके डूबने का भी एक स्थान है, किंतु यहाँ पर उसके सूर्यास्त के पहले और अंतिम और इसी प्रकार सूर्योदय के पहले व अंतिम स्थान को दृष्टिगत रखा गया है तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के शेष स्थान के बीच में है और सूरज चांद तारों और जमीन का चक्कर लगाना उनकी बहुत ही सूक्ष्म रचना का परिचायक है और इसी चक्कर लगाने के परिणाम में ही चार ऋतुएं होती हैं। इसी संबंध में सूरह मारिज की 40वीं आयत में आया है, पूरब और पश्चिम के ईश्वर की सौगंध। इसी आयत में पूरे साल सूरज के निकलने और उसके डूबने के स्थान को दृष्टि में रखा गया है।
सूरह रहमान की 26वीं आयत इंसान के मरने की ओर संकेत करती है और कहती है, जो भी जमीन पर है उसे मौत आएगी और केवल तुम्हारे ईश्वर का अस्तित्व बाकी रहेगा जो महानता और श्रेष्ठता वाला है।
पवित्र कुरान के व्याख्याकर्ताओं के अनुसार इस आयत में जो ये कहा गया है कि जो भी प्राणी ज़मीन पर है उसे मौत आएगी और वो मिट जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल मिट जाएगा, बल्कि मृत्यु सदैव बाकी रहने वाले जीवन का प्रवेश द्वार है और सदैव बना रहने वाला जीवन, उसमें पहुंचने के लिए मौत का आना आवश्यक है। यह आयत वास्तव में याद दिलाती है कि संसार सदैव रहने की जगह नहीं है, उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संसार से दिल लगा बैठना ईश्वरीय मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। सूरह रहमान की 27वीं आयत महान ईश्वर की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत करती है, जैसे महान ईश्वर ज्ञानी, शक्तिशाली और जीवित है। इसी प्रकार महान ईश्वर हर प्रकार के दोष व त्रुटि से पवित्र है और केवल वो है जो इस ब्रह्मांड में बाकी रहेगा और उसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। सूरह रहमान की 29वीं आयत में महान ईश्वर कहता है, जो भी आकाश और धरती में है वो उससे अपनी आवश्यकता की मांग करता है और हर दिन उसका एक काम है।
ब्रह्मांड की समाप्ति पर महान ईश्वर के अलावा न केवल समस्त चीजों का अंत हो जाएगा, बल्कि अब भी महान ईश्वर के मुकाबले में समस्त चीजें कुछ भी नहीं है और उनका बाकी रहना महान ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। अतः अगर एक क्षण के लिए भी वो इस ब्रह्मांड से अपनी कृपा दृष्टि हटा ले तो समस्त चीजों का अंत हो जाएगा। साथ ही उसके अलावा क्या कोई चीज है जिससे जमीन और आसमान में रहने वाले अपनी आवश्यकता की मांग करेंगे। सृष्टि व रचना सदैव महान ईश्वर की हर हालत व दशा में मोहताज हैं। अलबत्ता रचना की ये मोहताजी महान ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि चाहती है। उसके बाद सूरह रहमान की 29वीं आयत कहती है, प्रतिदिन उसका एक कार्य है, यानी वो लगातार चीजों की रचना कर रहा है और मांगने वालों के सवालों का जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है कि महान ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना करने के बाद उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया है, बल्कि सदैव उसके मामलों का संचालन कर रहा है।
सूरह रहमान की 31वीं और उसके बाद की आयतें प्रलय के दिन, हिसाब किताब और इस दिन की कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में बात करती हैं। ये आयतें जहां अपराधियों को चेतावनी देती हैं, वहीं मोमिनों के लिए प्रशिक्षा, जागरूकता और आशा का कारण है। प्रलय के दिन महान ईश्वर समस्त मनुष्यों और जिन्नातों के समस्त कर्मों का सूक्ष्म हिसाब किताब लेगा और उन्हें उनके कर्मों का पूरा पूरा बदला देगा। अलबत्ता इस विषय के विश्वास का हमारे जीवन में बहुत लाभ है। मनुष्य का इस विषय पर विश्वास संसार की अनुकंपाओं से लाभ उठाने में प्रभावी है। इस सूरे में प्रलय के दिन से संबंधित आयतों में भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्था बिखर जाएगी और समूचे ब्रह्मांड में बड़ी ही भयावह घटनाएं पेश आएंगी। धरती, आकाश और तारों में परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा और अप्रत्याशित मामले व घटनाएं सामने आएंगी। जैसा कि महान ईश्वर सूरह रहमान की 37वीं आयत में कहता है, फिर जब आकाश फटकर तेल की तरह लाल हो जाएगा।
महान ईश्वर की ओर से इन खतरनाक घटनाओं की घोषणा समस्त अपराधियों और मोमिनों के लिए जहां चेतावनी है, वहीं ये ईश्वरीय कृपा भी है। अतः इसके बाद फिर महान ईश्वर दोहराता और कहता है कि ईश्वर की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। प्रलय के दिन अपराधियों को उनके चेहरों से पहचाना जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रलय के दिन इंसान की सोच और उनके कार्य उनके चेहरों से दिखाई देंगे। उसके बाद अपराधियों को बहुत ही अपमान के साथ सिर के आगे के बाल और पैर पकड़कर नरक में फेंक दिया जाएगा। ये वही नरक होगा जिसका सदैव अपराधी व पापी इनकार करते थे। वास्तव में स्वर्ग, नरक और प्रलय का विश्वास न रखना इंसान के नरक में जाने का कारण बनेगा और वे आग और खौलते हुए पानी के मध्य होंगे।
सूरह रहमान की 46वीं आयत इसके बाद स्वर्ग में जाने वालों की चर्चा करती है और स्वर्ग की कुछ नियमतों का वर्णन करती है, ताकि नरकवासियों को मिलने वाले कड़े दंड के मुकाबले में उनमें से हर एक का महत्व स्पष्ट हो सके। महान ईश्वर कहता है, जो अपने पालनहार के स्थान से डरता है उसके लिए दो स्वर्ग हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महान ईश्वर अपने भले बंदों को स्वर्ग में विभिन्न बाग देगा जिसमें वे सदैव रहेंगे और उसमें कभी भी उन्हें मृत्यु नहीं आएगी। इसके बाद महान ईश्वर दो बागों की विशेषता बयान करते हुए कहता है, इन दो बागों में भिन्न भिन्न फल होंगे और इन दोनों बागों में दो हमेशा सोते उबलते होंगे और उस बाग में हर फल दो प्रकार के होंगे। स्वर्ग के फल विभिन्न प्रकार के होंगे और उनमें से हर एक दूसरे से बेहतर व उत्तम होगा। साथ ही स्वर्ग में रहने वाले रेशम के बने हुए बहुत ही उच्च कोटि के कालीन पर तकिया लगाए बैठे होंगे। प्रायः इंसान उस समय तकिया लगाता है जब वो आराम में होता है और ये परिभाषा स्वर्ग में रहने वालों की पूर्ण शांति की परिचायक है।
निश्चित रूप से परलोक में महान ईश्वर की ओर से जो नेमतें मिलने वाली हैं, उनको और उनकी विशेषताओं को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। और इन नेमतों के बारे में जो कुछ बयान किया गया है, वो केवल इसलिए है कि हम केवल अपनी क्षमता के अनुसार उसे समझ सकें। स्वर्ग में रहने वाले इंसान जब चाहेंगे, स्वर्ग के फल खुद उनके पास आ जाएंगे और उन्हें तोड़ने का भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। स्वर्ग में हर इंसान को बहुत ही सुंदर व पवित्र महिलाएं मिलेंगी। सूरह रहमान की 56वीं आयत में महान ईश्वर कहता है, اس میں پاک دامن اور دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھا کر دیکھنے والی مہیلائیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جنات نے۔
اس آدھار پر کنواری اور ہر درشت سے پوتر ہیں وہ مہیلائیں۔ سور کی مہیلائیں کیول اپنے پتیوں سے پریم کریں گی۔ یہ پتنی کی بہت بڑی وشیشتا ہے کہ وہ اپنے پتی کے اترکت کسی انیہ کے بارے میں نہ سوچے اور کسی دوسرے سے پریم نہ کرے۔ سور کی مہیلائیں لال منی اور مونگے کی بھانتی ہیں۔ پوتر قرآن نے لال منی اور مونگے کی اپما دے کر ان کی سندرتا کی اور سنکیت کیا ہے۔ سورہ رحمان کی 60ویں آیت آشا سے بھرے بندو کو پرستت کرتی ہے اور کہتی ہے، کیا احسان اور بھلائی کا بدلہ بھلائی کے اترکت کچھ اور ہے؟ ارتھات جن لوگوں نے اس سنسار میں اچھے کرم کیے ہیں انہیں پرلوک میں اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا۔
اس پرکار سورہ رحمان کی انتیم آیتوں میں سورگ اور سورگ میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں آیا ہے کہ سندر اور ہرے بھرے باغ، ابلتے سوتے، کھجور اور انار سہت وبھن پرکار کے پھل، بہت ہی سندر و پوتر مہیلائیں جو سورگ کے محلوں میں ہیں اور وہ کنواری ہیں اور کسی بھی انسان یا جنات نے انہیں اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ ایسے میں ہیں کہ جب سورگواسی سورگ کے مولیوان سندر تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ بہت ہی سندر ہرے رنگ کے وستروں سے ڈھکے ہوں گے۔ سورہ رحمان مہان ایشور کی دیا اور نعمتوں کے بیان کے ساتھ آرم ہوتا ہے اور مہان ایشور کی وشیشتاؤں کے بیان کے ساتھ سماپت ہوتا ہے۔
پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہمیں انومتی دیں۔